ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। भगवान श्री राधा राज बिहारी श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान और गौर नित्यानंद प्रभु शिला प्रभुपाद की कृपा से और उनकी अहेतु की महती कृपा से हम लोग आज पुनः श्रीमद् भागवतम का जो श्लोक है इस पर विचार करेंगे। वस्तुतः श्रीमद् भागवत के श्लोक में विचार करने का किसी पर अधिकार नहीं है, लेकिन चूंकि हमको सुखदेव गोस्वामी के माध्यम से इसके कीर्तन करने का और श्रवण करने का अवसर दिया गया कि परमहंस अवस्था में उपदेश तो नहीं कर सकते, कम से कम इसके श्रवण और कीर्तन से पठन से अंतःकरण की शुद्धि कर सकते हैं, क्योंकि जो इसके प्रवक्ता सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज दोनों परमहंस अवस्था में हैं। एक बहुत आश्चर्य की बात है भागवत की कि देखिए भगवत गीता जहां पर समाप्त होती है वहां पर से भागवत का प्रारंभ होता है। भगवत गीता मोक्ष से समाप्त होती है। भगवान ने कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुच। मतलब सभी धर्मों का त्याग करके आ जाओ, तुमको मुक्त कर दूंगा सभी पापों से। सभी पापों से मतलब सभी पुण्यों से भी, क्योंकि पुण्य भी पाप ही है। इसलिए भगवान ने अलग से पुण्य को कहा नहीं वहां पर, क्योंकि पुण्य भी क्या है, एक प्रकार से पाप ही है, क्योंकि दोनों का फल पुण्य और पाप का ही संसार में ही है दुखालय में। तो वहां पर मोक्ष से जहां समाप्ति हुई, मतलब अर्जुन ने अज्ञान का अभिनय किया और अज्ञान के रूप में प्रदर्शित हुआ और अज्ञान समाप्त हुआ, अमोक्ष के लिए भगवान ने कह दिया। और यहां पर मोक्ष वो कहते हैं शुरुआत में है कि धर्म प्रोजित कहतवत्र। चैतन्य महाप्रभु ने भी बोला है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ क्या है, कहतव हैं, छल कपट हैं, हमारे साथ छल कपट होता है। लेकिन जो मोक्ष है उनमें कहतव में प्रधान है, सबका गुरु है, क्योंकि उससे क्या होता है, धर्म अर्थ काम से तो स्वसुख की इच्छा रहती है ना। धर्म अर्थ काम क्यों करता है व्यक्ति, अपनी इच्छा के लिए, सुख प्राप्ति के लिए। लेकिन मोक्ष क्यों चाहिए, दुख की निवृत्ति के लिए। तो दोनों में स्वसुख का भाव है, इसलिए वो भक्ति नहीं है, वो भागवत धर्म नहीं है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। इसीलिए प्रशब्देनात्र मोक्ष संधिर अपि निरस्ता, श्रीधर स्वामी ने प्रशब्द में लिखा कि प्रशब्द से यहां पर जो मोक्ष है उसका भी तिरस्कार किया जा रहा है। मतलब गीता जहां समाप्त हुई थी अज्ञानी से, अज्ञान अर्जुन ने अज्ञान रूप में प्रकट किया अपने आप को, भगवान ने उसको मोक्ष देने के लिए बोला। और यहां पर सुखदेव गोस्वामी जो परमहंस अवस्था में पहले ही पहुंचे हुए हैं, तो वहां पर से यहां भागवत प्रारंभ हुई कि मतलब अज्ञान आदि सब निवृत्त हो गया, हृदय शुद्ध हो गया और ब्रह्म में लीन है, उसके बाद उन्होंने भागवत का प्रारंभ किया। तो ऐसा भागवत है जिसके कहने सुनने के हम लोग अधिकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए इसका प्रतिदिन पाठ करते हैं, श्रवण करते हैं। तो इसी क्रम में आज हम लोग हिरण्यकश्यपु का जो वध की वध का जो अध्याय चल रहा है कि उनका वध भगवान श्री नरसिंह ने किया आठवें अध्याय में, आज इसका श्लोक लेंगे 32वां। पीछे दोहराएंगे, सटावधूता जलदाह परापतन ग्रहाश्च तद्दृष्टि विमुष्टरोचिषः अम्भोधयः श्वासहता विचुक्षुभुर् निरादभीता दिगिभा विचुक्रुषुः सटावधूता जलदाह परापतन सटावधूता जलदाह परापतन ग्रहाश्च तद्दृष्टि विमुष्टरोचिषः ग्रहाश्च तद्दृष्टि विमुष्टरोचिषः अम्भोधय श्वासहता विचुक्षुभुर् अम्भोधय श्वासहता विचुक्षुभुर् निर्धादभीता दिगिभा विचुक्रुषुः निर्धादभीता दिगिभा विचुक्रुषुः पढ़िए। निर्धादभीता दिगिभा विचुक्रुषुः सटावधूता जलदाह परापतन श्वासहता विचुक्षुः निरादभीता दिगिभा विचुक्षुः सटावधूता जलदा परापतन ग्रहाश्च तद्दृष्टि विमुष्टरोचिषः अम्भोधय श्वासहता विचुक्षुः निर्धादभीता दिगिभा विचुक्रुषु। माताजी, शब्दार्थ, सटा नृसिंह देव की जटा से अवधूताह हिले हुए जलदाह बादल परापतन बिखरे हुए ग्रहाह चमकीले ग्रह च तथा तद्दृष्टि पैनी दृष्टि से विमुष्ट निकाल ली गई रोचिषः जिसका तेज अम्भोधयः समुद्रों का जल श्वास हताह नृसिंह देव के श्वास से प्रताड़ित विचुक्षुभु शुभ हो उठा निराद भीताह नृसिंह देव की गर्जना से भयभीत दिगिभाह दिशाओं की रखवाली करने वाले सारे हाथी विचुक्रुषु सिंघाड़ उठे। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की नृसिंहदेव के सिर के बालों से बादल हिलकर इधर उधर बिखर गए। उनकी जलती आंखों से आकाश के नक्षत्रों का तेज मंद पड़ गया और उनके श्वास से समुद्र उद्वेलित हो उठे। उनकी गर्जना से संसार के सारे हाथी भय से चिंघाड़ने लगे। दोहराएंगे, नृसिंहदेव के सिर के बालों से बादल हिलकर इधर उधर बिखर गए। उनकी जलती आंखों से आकाश के नक्षत्रों का तेज मंद पड़ गया और उनके श्वास से समुद्र उद्वेलित हो उठे। उनकी गर्जना से संसार के सारे हाथी भय से चिंघाड़ने लगे। तात्पर्य, जैसा कि भगवान ने भगवत गीता के दसवें अध्याय के 41वें में कहा है, यद यद विभूतिमत् सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंश संभवम्। तुम जान लो कि समस्त सुंदर गौरवशाली तथा शक्तिशाली सृष्टि मेरे तेज के एक स्फुलिंग से ही प्रकट होती है। आकाश में ग्रहों तथा नक्षत्रों से का प्रकाश भगवान के तेज का आंशिक प्राकट्य है। विभिन्न जीवों में अनेक अद्भुत गुण पाए जाते हैं, किंतु जितनी भी अद्वितीय वस्तुएं पाई जाती हैं वे भगवान के तेजस की अंश मात्र हैं। समुद्रों की उत्ताल तरंगे तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सृष्टि के अनेक आश्चर्य उस समय नगण्य बन जाते हैं जब वे अपने विशेष रूप में इस जगत में अवतरित होते हैं। उनके साकार सर्वविजयी दिव्य गुणों की तुलना में सारी वस्तुएं तुच्छ हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्न्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं राधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। यह स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेक मध्यात्मदीपमतितीर्षताम् तमुन्धम् संसारिणाम् करुणयाः पुराणगुह्यम् तम् व्याससूनुम् नतोऽस्मि। कांतिशिता मृषति निंदित शारदेन्दु यत्रैकतो विलसितामसितांग शोभाम् वृंदावने विगतया मुनगांग संगम राधा मुकुंद युगलम तदहम नमामि। पंचतत्वात्मकम् कृष्णम् भक्तरूप स्वरूपकम् भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। वांछाकल्पद्रुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सटावधूता जलदा परापतन ग्रहाश्च तद्वृष्टि विमुष्टरोचिषः अम्भोधया श्वासहता विचुक्षुभ निराधभीता दिगिभा विचुक्रुषुः। नृसिंहदेव के सिर के बालों से बादल हिलकर इधर उधर बिखर गए। उनकी जलती आंखों से आकाश के नक्षत्रों का तेज मंद पड़ गया और उनके श्वास से समुद्र उद्वेलित हो उठे। उनकी गर्जना से संसार के सारे हाथी भय से चिंघाड़ने लगे। तो जैसा कि आप लोगों को जो एक क्रम चल रहा है, सारी कथा ज्ञात है कि क्या क्या हुआ, कैसे भगवान प्रकट हुए और भगवान के इस समय स्वरूप का वर्णन किया जा रहा है कि भगवान जब प्रकट हुए तो कैसा भयंकर स्वरूप था। तो इस भयंकर स्वरूप में भी ये तामसी स्वरूप नहीं था। कुछ तामस स्वरूप होते हैं, जैसे काली चंडी मुंडी के जो रूप होते हैं वो तामसी मूर्ति उनको कहा जाता है, लेकिन भगवान नरसिंह का तामसी स्वरूप नहीं है। हमको इस विषय में आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि वस्तुतः भगवान का स्वरूप ऐसे बनता कैसे है कि खून भी है रक्त भी ऐसा फिर भी दिव्यता है उसके अंदर, ऐसा क्या है उसमें, है ना, कि सबको मार करके उनकी माला पहन लेंगे, खून पी जा रहे हैं, खून निकाल दे रहे हैं, पूरे छाती निकाल के बाहर फेंक दिए, तो ऐसा कैसे होता है। और यहां पर प्रभुपाद ने भी तात्पर्य में विभूतियों का वर्णन किया है कि जहां पर भी कुछ अधिक दिखाई पड़े उसको मेरी विभूति समझना। इस पर भी थोड़ा सा विचार करेंगे। और भी विचार करने के लिए यहां पर भगवान के स्वरूप का वर्णन किया गया है कि भगवान का इतना दिव्य स्वरूप होता है, जय श्री श्री राधा राज बिहारी ललिता सखी विशाखा सखी की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की, श्री श्री गौर नित्यानंद प्रभु की, कि जैसे सूर्य निकल आए तो उसके सामने जो जुगनू होती है रात वाली, या दिया है या बल्ब, चाहे लाखों करोड़ों बल्ब लगा दो, चाहे जितने वॉट के लगा दो, लेकिन एक सूर्य यदि निकल आया तो सब फेल है। कितने भी बल्ब लगा दो, कितने बड़े बड़े मरकरी लगा दो, कुछ भी लगा दो, तो भगवान का स्वरूप आखिरकार ऐसा कैसे है कि जो माया को परास्त कर देता है। आप लोग कथा सुने हैं इसलिए मैंने सोचा इस विषय पर थोड़ा सा विचार किया जाएगा। संभवतः आप लोगों ने सुन भी लिया होगा लेकिन फिर भी नया हो सकता है आप लोगों के लिए हो। तो यहां पर अनुवाद में एक बात लिखा है कि आकाश के जितने भी नक्षत्र थे सबका तेज मंद पड़ गया। मंद इसलिए पड़ गया क्योंकि कठोपनिषद में लिखा है कि यस्य भाषा विभाति सर्वम, कि जिनकी विभाषा से, जिनके प्रकाश से ही सब प्रकाशित होता है। केवल सूर्य चंद्रमा नहीं, हमारी वाणी हो, मन हो, इंद्रियां हो, कोई भी हो, यद वाचान अभ्युदरम येन वाग अभ्युद्यते। केनोपनिषद में दूसरे अध्याय के चौथे से लेकर के आठवें मंत्र में पूरा बतलाया है कि जितने भी क्रियाकलाप वाणी मन इंद्रियां सब कुछ भगवान से होता है। पापकर्म भी भगवान से हुआ तो हम दंड क्यों भोगते हैं, है ना, पाप भी। वेद कहता है, कौशिकी उपनिषद में लिखा है कि ऐसा वही साधु कर्म का रहती, ये साधु कर्म कराता है और असाधु माने पाप भी कराता है। तो भगवान ने पाप भी कराया और पुण्य भी कराया, परंतु हमको दंड क्यों मिला फिर। लेकिन भगवान ऐसा नहीं, भगवान जैसे केवल उसकी शक्ति प्रदान करते हैं, आया था ना कि बलम बलि नाम, जितना तो तुम्हारे में बल है और जितने भी बलशाली हैं सब किसका बल है, भगवान का। आप लोग पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि कैसे भगवान गुणों के माध्यम से जिसमें जो गुण रहेगा उसी की वृद्धि हो जाएगी। जैसे इलेक्ट्रिसिटी चारों ओर बह रही है लेकिन हीटर में जाएगी तो गर्म करेगी और कूलर में जाएगी या फ्रिज में जाएगी तो ठंडा करेगी, माली सभी पेड़ों में एक ही पानी डालता है ना, लेकिन कोई जो नीम का पेड़ है वो कड़वा ही रहेगा, आम का है वो मीठा रहेगा, अंगूर का रहेगा खट्टा मीठा है, जो भी जैसी जिसकी प्रकृति है, जिस गुण का है उसी में वृद्धि होती है। इसलिए भगवान ही पुण्य कराता, भगवान ही पाप कराता, लेकिन ये उनकी शक्ति से, लेकिन उनमें दोष नहीं जाए। क्यों? जैसे इलेक्ट्रिसिटी हाउस होता है, क्या बोलते हैं उसको, बिजली घर, हाउस पावर, वो बिजली घर से सब जगह बिजली आती है। अब कोई व्यक्ति उस बिजली नंगी तार को ऐसे पकड़ ले हाथ में तो मर जाएगा, तो इसमें पावर हाउस वाली की तो गलती नहीं है। और कोई व्यक्ति उसका प्रयोग करे, खाना बना ले, आग ताप ले, जो भी करना हो कर ले। तो इसीलिए ऐसे ही भगवान की शक्ति है, बस इस रूप में मानना है। वो कराता है, पक्की बात है, और कोई करा भी नहीं सकता है, वो शक्ति प्रदान करने मात्र का है। उसकी शक्ति के अतिरिक्त किसी में शक्ति है ही नहीं। मन जो सोचता है, न मनसा मनुते ये नाहुर मनोमतम केन उपनिषद, कि मन जो सोचता है वो भी उसकी शक्ति से सोचता है, क्योंकि मन तो जड़ है, वो सोच ही नहीं सकता है। तो यहां पर कहा गया कि आकाश में जितने नक्षत्र हैं सब के सब फीके पड़ गए। अरे जिससे वो प्रकाशित हो रहे थे, जिनकी लाइट लेकर के, अब वो सामने आ गई वो पूरी की पूरी लाइट, तो वो तो सब जीरो पड़ गए। तो इसीलिए भगवान का ऐसा दिव्य स्वरूप है कि बिना लाइट के वो चमकते हैं। उनके शरीर में ऐसी लाइट लगी हुई है कि उसमें किसी और चीज की, जैसे हमारे यहां पर पानी से लाइट चलाते हैं, लाइट का निर्माण करते हैं, वहां पर भगवान के शरीर में कोई पानी से लाइट नहीं निर्माण होती। अपने आप दिव्य है वो, अलौकिक है वो। उसी के विषय में बताऊंगा कि आखिरकार वो होता कैसे है। तो आप लोग ध्यान पूर्वक श्रवण करना, सो मत जाना, क्योंकि थोड़ा विषय में कठिनाई होगी समझने में। तो इसीलिए दूसरी बात, यहां पर अनुवाद में लिखा है कि दिग्विभा विचुक्रसु, पृथ्वी के ऊपर ऊपर अंतरिक्ष में आठ दिशाओं में, चार दिशाएं तो सबको पता है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और उनके बीच बीच की एक दिशा, वो आठ दिशाएं, आठ दिशाओं में प्रकृति के, पृथ्वी के प्रोटेक्शन के लिए गजेंद्र हुए हैं। अलग अलग नाम के हैं, ऐरावत है, कुमुद है, पुष्पवंत है, पुष्पदंत है, वामन है, बहुत सारे आठ हैं। उनकी पत्नियां भी हैं साथ में, पूरा उनका विस्तार है वहां, जो कि पृथ्वी को रक्षण करते हैं। तो ये हमारा इतना विशेष विषय नहीं है, लेकिन इतना यहां पर कहा गया कि नरसिंह भगवान का जो वेग था, ये सटा इसको बोलते हैं, जो यहाँ के जो बाल होते हैं ना, ये सटा कहलाते हैं। ऐसा करके जब हिलाए जम करके, सब पूरा उसके हिलाने से क्या, वो टच नहीं हुआ वहां पर, इतनी भयंकर गर्जना हुई बालों, सोचिए कितने कठोर बाल थे, जब आपस में टकराए। संसार में ही देखो, यदि कोई आदमी धीरे से प्रेम से जा रहा है और अचानक ट्रेन आ जाए, पुम जम करके आवाज कर दे, तो आदमी घबरा जाता है। तो जब संसार के शब्द में इतनी पावर है कि आदमी डगमगा जाता है, एकदम से कोई आदमी कुछ नहीं, आनंद में हरे कृष्णा जप रहा, एकदम से कोई आज कुछ आवाज कर दे तो आदमी भड़क जाता है कि नहीं, पूरा शरीर हिल जाता है। तो शब्द की ऐसी प्रकृति है कि वो अंदर जाते ही वायु के साथ, अग्नि के साथ, जल, जितने भी अन्य तत्व सबको हिला देता है वो, क्योंकि सारों शब्द की उत्पत्ति तो शब्द से ही होती है ना। सबसे पहला भौतिक तत्व है शब्द, तो वहां शब्द से फिर आकाश, फिर वायु, सब धीरे से आते हैं। तो शब्द अंदर जाते ही हमारे अंदर जाकर क्या करता है, जितने भी पांचों तत्व सबको हिला डुला डालता है वो। तो ऐसे भगवान नरसिंह का जब यहां हिलाए जम करके, तो सारे जितने भी लोग थे सब डगमगा गए, बादल तितर बितर हो गए आवाज से। तो इस प्रकार से यहां पर भगवान नरसिंह के दिव्य स्वरूप का वर्णन किया गया। अभी इसमें यह समझना कि जैसे नरसिंह भगवान हैं, अभी वस्तुतः भगवान श्री कृष्ण जितने स्वरूप हैं सबके मैन आगार हैं, मैन है वो, स्वयं रूप हैं। नरसिंह आदि के हैं कल्पावतार हैं, लीला अवतार इनको बोलो, स्वांश में गिने जाते हैं। जैसे नारायण पर व्योम के वो विलास हैं, उसके बाद आता चतुर्वी, फिर उसके बाद भगवान नरसिंह आदि वराह, बहुत सारे अवतार, जितने 25 कल्पावतार हैं स्वांश में, 25 अवतार होते हैं। वो अवतार भी स्वयंभू मनवंतर में 14 अवतार हो जाते हैं, फिर बाद में कुछ सरोचिस में होते हैं दो तीन, गजेंद्र का रैवत उत्तम में होता है, फिर तामस में, फिर रैवत में, उसके बाद चाक्षुष मनवंतर में नरसिंह भगवान जो सतयुग था उसमें ये उनका आविर्भाव हुआ। और भी जितने भी अवतार हैं उनमें से बामन देव का कहते हैं रूप गोस्वामी कि तीन बार अवतार हुआ अलग अलग समय में। वैवस्वत मनवंतर की जो चौथी चतुर्युगी थी उसमें भी आए, चक्षुष मनवंतर का जो अंतिम थी चतुर्युगी उसमें भी आए, और उसके पहले भी आए सतयुग में किसी राक्षस के यहां पर कुछ नाम बताया था उसमें उसका उद्धार करने के लिए। ऐसी बराह भगवान का दो बार है, मत्स्य अवतार का भी दो बार है। तो इस प्रकार से अलग अलग अवतार प्रकट होते हैं, तो उन अवतारों में भी जिनमें शक्ति की न्यूनता होती है वो स्वांस कहलाते हैं। वस्तुतः स्वरूपता एक ही चीज है, भगवान श्री कृष्ण में, नरसिंह में, विष्णु में कोई अंतर नहीं है, लेकिन केवल क्या है कि न्यून शक्ति होने के कारण से। मध्वाचार्य जी ने स्वप्ययात एक सूत्र है वेदांत सूत्र का, पहले अध्याय के पहले पाद का नौवां सूत्र है, उसके भाष्य में लिखा है कि जितने भी भगवान के अवतार हैं पूर्ण हैं, पूर्ण है, लेकिन हमारे गोस्वामियों ने उसके और आगे वाले जो सूत्र हैं उनको लेकर के बताया कि पूर्ण तो हैं, सतरूप से पूर्ण है, माने स्वयं स्वरूपता एक ही है, लेकिन उनमें भेद किस बात का है, तो भेद रस का है। अभेद भी कहता है स एषा रसाना गुण रसतमा परमा, छांदोग्य उपनिषद पहले अध्याय के पहले खंड का पहला तीसरा मंत्र है छांदोग्य उपनिषद में 1.1.3 में कि स एषा रसानाम रसतमा परमा, तो वहां पर भी रस है, सब रस स्वरूप है, सारे अवतार सब में आनंद है, सब पूर्ण है, लेकिन फिर भी रसानाम रसतमा, डिग्री होती है ना गुड बेटर बेस्ट है ना, पॉजिटिव क्या होता है कंपेरेटिव और सुपरलेटिव, तो ऐसे ही इसमें है रसों में कि सब स्वरूपता एक ही है, सब विष्णु है, सब कृष्ण है, लेकिन रसेन उत्कृष्टते श्री से, जो रस से श्री कृष्ण की उत्कृष्टता है, जो रस श्री कृष्ण में है और किसी में उतना रस है नहीं, वो जो चार प्रकार की जो माधुरी है वो और किसी में है ही नहीं। जैसे एक सिंपल सी बात समझ लीजिए, जैसे रसगुल्ला है और जलेबी है, मीठे दोनों हैं, लेकिन फिर भी आपको कहेंगे कि क्या खाओगे, तो आप कहोगे रसगुल्ला खाएंगे, क्योंकि रसगुल्ला में ज्यादा मधुरिमा है, और अंतर कुछ नहीं है, मिठास दोनों है, मिठास नाम से दोनों मीठे पदार्थ हैं, लेकिन फिर भी रसगुल्ले का जो आनंद है वो उसमें नहीं है। तो जो श्री कृष्ण में जो आनंद है वो और स्वरूपों में उतना वो नहीं है, इसीलिए लक्ष्मी जी जो वैकुंठ में रहती हैं, वो वैकुंठ में रहती हुई भी क्या करती हैं, कहते हैं कि रासलीला में आने के लिए सललना आचरत तपह, कि उस लक्ष्मी जी ने भी तपस्या किया, मतलब वैकुंठ का रस है लेकिन उनको मजा नहीं आया उसमें, वो श्री कृष्ण वाला रस चाहिए। तो इस प्रकार से ये अवतारों का सिस्टम है, लेकिन इनमें आखिरकार एक ऐसा तत्व है जिसके कारण से ये सारी गतिविधियां होती हैं, उसका नाम है विशुद्ध सत्व, उसको समझाएंगे आगे। यहां पर श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिखा है कि विभूतियां अलग अलग है, तो हम कैसे समझे कि जैसे किसी ने उस दिन प्रश्न किया था कि भगवान कहते हैं कि कवि नाम उष्णा कवि, और शुक्राचार्य तो अभक्त जैसे हैं, काम करते हैं, वो हमेशा दैत्यों राक्षसों के पक्ष में लेकर के गलत कार्य ही होता है उनसे, तो कैसे भगवान की विभूति है। वस्तुतः विभूति को इस प्रकार समझना चाहिए, क्योंकि भागवतम के ये जो विभूति जैसे 10वें अध्याय में है गीता में, ऐसे ही भागवतम के 11वें स्कंद के 16वें अध्याय में भगवान ने सेम विभूतियां बोली हैं, और भी उसमें ऐड किया हुआ कुछ। तो विभूति कहने का मतलब ये है कि कोई ये ना समझ ले, जैसे किसी व्यक्ति में ज्यादा ज्ञान दिख रहा है, किसी में ज्यादा बल दिख रहा है, कोई ज्यादा सुंदर है, जो भौतिक गुण है किसी में अधिक मात्रा में है, तो कोई सोचेगा हो सकता है ये भी भगवान का अवतार हो, भगवान ही ना हो साक्षात, कि ये भी कुछ है गुण, जैसे कई लोग सचिन है, अमिताभ बच्चन है, बहुत उनको ही भगवान मानते हैं क्योंकि भौतिक गुण है उनके अंदर, बहुत सारे और भी देवता हैं उनको भगवान मानते हैं इंद्रादियों को, है ना, तो ऐसा कोई उनको भगवान अलग से ना मानने लगे। इसीलिए विभूति में कहा कि ये मत सोचो कि ये उसका प्रकाश है, ये उसकी शक्ति है। मान लो कवि है, कवि माने विद्वान, कवि नाम उष्णा कवि, कवि कम याने होता है सुखम, अवी माने वाती ददाती प्रवाहती, जो सुख का विस्तार करे उसका नाम है कवि माने विद्वान। वो मूर्ख नहीं हो सकता, विद्वान ही सुखी कर सकता है समाज को और कोई नहीं कर सकता, इसलिए उसका नाम कवि। तो उस कवि में जो विद्वत्ता है वो उसके बल से नहीं आई हुई है, वो मेरे अंश से, मेरे तेज से, मेरे प्रभाव से है। इसलिए तो उसको अलग मत समझ लेना कि शुक्राचार्य कोई अधर्म है, धर्म कैसे भी जिनमें जो भी दिखता अधिक वो मेरे अंश से है। वैसे भी जो विभूति कहते किसको है, जिनमें आठ कलाओं से अधिक कलाएं हों उनका नाम है विभूति। सोलह कलाएं होती हैं, है ना, सोलह कलाएं होती हैं, श्री ह्री भू कीर्ति इला लीला कांति विमला, ये सात, और उत्कर्षणी ज्ञाना प्रहवी सत्या ईशाना अनुग्रहा, ये आठ नौ और हैं। तो ये सब मिला करके सोलह कलाएं, सोलह शक्तियां कहलाती है। यही कला शक्ति एक ही चीज है। तो जिनमें, जिन जीवों में शुरू की साथ और साथ में उत्कर्षणी उत्कृष्ट करने वाली वो जिसके अंदर आ जाए तो वो विभूति कहते, उस चीज को विभूति कहते हैं। और ऐसे महापुरुषों में जहां जहां भगवान कहते हैं कि ये मैं हूं, ये मैं हूं, तो ये विद्यमान रहता कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से। तो उसको विभूति बताया है रूप गोस्वामी ने। तो इस प्रकार से ये विभूति की चर्चा यहां पर, तो उसको अलग न समझा जाए इसलिए भगवान उसको कहते हैं मेरे अंश से है, मेरी शक्ति से, क्योंकि उनकी शक्ति के अलावा दूसरी की शक्ति काम कर ही नहीं सकती कहीं पर। किसी के पास शक्ति है ही नहीं तो काम क्या करेगी। बुद्धि में जो ज्ञान शक्ति है, धारणा शक्ति है, वो सब कहां से आ रही है, मेरे से। सर्वस्य चाम यदि सन्निविष्ट मत्ता स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम था। अच्छा, तो जो भी होगा विद्वान स्मरण धारण करने वाला कोई भी किसी भी प्रकार से सब भगवान से आता है। तो अब ये गुण भगवान में कैसे आता है, ये प्रश्न हुआ। हम में तो चलो आ गया, लेकिन अब ये जो गुण है इतना दिव्यता की वो हमको प्रकाशित कर रहा है, ये उनमें कहां से आता है, तो इसको समझने की आवश्यकता है। ये जो गुण है ये भगवान में विशुद्ध सत्वात्मक है। वो हम लोग बहुत सुनते हैं ना, विशुद्ध सत्व से, विशुद्ध सत्व से, जो तीनों गुणों से परे उसका नाम विशुद्ध सत्व। वो है कौन सा, फंडा क्या है वो विशुद्ध सत्व का। तो एक्चुअल में विशुद्ध सत्व जो है वो भगवान की जो स्वरूप शक्ति है, तीन शक्तियां हैं उनमें जो स्वरूप शक्ति है उसी की एक वृत्ति विशेष है, उसी का एक परिणाम विशेष है, उसी का नाम है शुद्ध सत्व। उस विशुद्ध सत्व के कारण ही भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं, अपने सारे परिकरों को प्रकट करते हैं। यदि वो विशुद्ध सत्व ना हो उनके अंदर तो कुछ प्रकट नहीं होगा। अब आप लोग ध्यान देना, सोना मत, कैसे होता है, एक सीरियल से बता रहा हूं। आप लोगों ने सुना होगा सच्चिदानंद, स्वरूप शक्ति के ही तीन अंश होते हैं, सत चित आनंद, स्वरूप शक्ति के ही तीन अंश हैं। वस्तुतः भगवान में केवल और केवल आनंद ही आनंद है। सतचित तो उनके विशेषण हैं, एडजेक्टिव्स हैं। भगवान में भगवान तो केवल आनंद आनंद है बस, और कुछ है ही नहीं। आनंदो ब्रह्मेति बजानात आनंदाध्येव खलुमानि भूतानि जायन्ते आनंदे न जातानि जीवन्ति। वो केवल आनंद है और कुछ है ही नहीं। जो सतचित जो लगा दिया उसमें, सत माने हमेशा रहने वाला आनंद है, अचित माने ज्ञान स्वरूप आनंद है, शुष्क नहीं है, सूखा आनंद नहीं है ज्ञानियों के जैसे जो माया का हो, ऐसा नहीं है। वो सतचित वाला आनंद है। तो इस प्रकार से जो स्वरूप शक्ति की, ध्यान से सुनना पड़ेगा तभी याद रह पाएगा, दोबारा सुन लेना, नहीं तो भूल जाएगा, ये कठिन विषय है। तो सतचित आनंद जो स्वरूप शक्ति के तीन अंश है, उस सत का ही अनुभव होता है संधिनी, उस संधिनी शक्ति जिसको कहते हैं, उसी सत चित का ही एक अनुभव होता है संवित ज्ञान शक्ति, उसी जो आनंद है उसका ही अनुभव होता है लादनी। तीन हो गए जिस समय। अब जैसे भगवान नरसिंह प्रकट हुए, तो जैसे ही जब प्रकट होंगे तो चित शक्ति में जिस समय संधिनी संवित और लादनी तीनों एक साथ रहेंगी, उस समय ये भगवान का विग्रह बनता है। लेकिन आप कहेंगे किसी दिन बना है विग्रह, किसी दिन नहीं, ये सनातन सृष्टि है, याद रखना सनातन बना है, एक दिन बना होगा ऐसा नहीं है, ये सनातन सदा से है, बस बता देते हैं ऐसा ऐसा बना। जैसे ये सृष्टि भी एक दिन बनी ऐसा नहीं है, यदि एक दिन बनी तो फिर हम क्यों फंसे, क्योंकि यदि एक दिन बनी, यदि ऐसा कहेंगे कि सृष्टि का निर्माण एक दिन किसी दिन हुआ, तो इसका मतलब हम मुक्त थे और हमको जबरदस्ती उसमें कर्म बंधन में डाल दिया गया, तो ये भी कहना पड़ेगा साथ में। इसलिए एक दिन भगवान सृष्टि केवल आविर्भाव और तिरुभाव करते हैं, बस वो सदा से है। एतज गेयम नित्यमेव आत्मसंस्थम नाता परम वेदितव्यम ही किंचित भोक्ता भोग्यम प्रेरितारम च मत्वा सर्वम प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्ममेतत्। श्वेतासुतर उपनिषद पहले अध्याय का 12वां मंत्र है। ये मंत्र नारद परिवाजिक उपनिषद में भी है 9वें अध्याय में। तो सदा से है भगवान की सृष्टि, जो बता रहे हैं गोस्वामी लोगों ने बताया, इस सदा से है, एक दिन कभी बनी नहीं है वो, इस सदा से है। तो जिस समय चित में संदनी संबित और अहलादनी तीनों शक्ति रहें, उस समय भगवान की मूर्ति प्रकट होती है, विग्रह जिसको बोलते हैं, स्वरूप मतलब वो प्रकट हमेशा है। जिस समय, मैं उदाहरण देके समझाऊंगा आपको तो समझ में आ जाएगा, इतना समझ लो कि जिस समय विशुद्ध सत्व में आह्लादनी होती है, आह्लादनी शक्ति से युक्त होते हैं भगवान, उस समय गुहा शक्ति मतलब भक्ति प्रकट होती है। जो हम लोग भक्ति कर रहे हैं, ये जो महापुरुष जो कर, जिनमें भाव भक्ति या प्रेम भक्ति जो होती है, वो भगवान जिस समय विशुद्ध सत्व के साथ आह्लादनी अनुभव युक्त होता है, उस समय भक्ति प्रकट होती है। कैसे? सिंपल सी बात है, किसको समझ लो पहले, तो आप आगे की बात समझ लेना। हम ही लोगों में तीन गुण हैं कि नहीं? तीनों गुणों में जिस समय हमारे अंदर तमोगुण की अधिकता हो जाती है तो हमको नींद आ जाती है, होती है। जिस समय हमारे ही हृदय में सत्वगुण की अधिकता होती है तो सत्वात् संजायते ज्ञानम, तो उस समय ज्ञान की वृद्धि होती है, ज्ञान होता है, जागृत अवस्था हो जाती है। रजोगुण की अधिकता होती है, गुण वहीं पर हैं लेकिन वो दब जाते हैं, उठ जाते हैं, जो ज्यादा मात्रा में हो जाएगा उसी के अनुसार क्रिया होगी, वो अंदर ही रहते हैं। बोरिंग तो नहीं हो रहा ना ये विषय? हाँ, इसको समझना जरूरी है। तीन चीज जाने बिना कोई गोलोक और कहीं भगवत धाम जा ही नहीं जा सकता है। एक भगवान का और गुरु का महत्व, सिग्निफिकेंस क्या है जानना, ठीक ठीक जानना। हाँ, कृष्णा गीता में लिखा भगवान है, भागवत में भी लिखा है, ऐसा जानना नहीं, इसको जानना नहीं, तो आइडिया मात्र मिला है। जानना मतलब मानना, मानना मतलब उनसे प्यार कर लेना, ऐसा जानने को बोला जाता है, जानना, ज्ञान उसको कहते हैं। तो वो जानना कि मतलब यदि उसको जान गया तो फिर कहीं और आसक्ति होगी। यदि भगवान बहुत सुंदर है तो हम कचड़े में क्यों मन लगाए हैं, इसका मतलब हमने ठीक ठीक नहीं जाना। जैसे आप 10 दिन से भूखे पड़े हैं और आपके सामने यदि कोई 50 प्रकार के व्यंजन ला के रख दे, और आपके घर का कोई व्यक्ति आप खाने जा रहे, अरे इसमें जहर डला है, तो आप खाओगे उसको? आपको पता है जहर के विषय में ठीक ठीक ज्ञान है, खाते ही मृत्यु हो जाएगी। मैं तो अभी 10 दिन से हूं, कैसे तैसे जिंदा ठीक हूं, लेकिन जैसे ही जहर खाया तो तुरंत ही मर जाऊंगा। तो कैसा ज्ञान? जहर के विषय में पूरा पूरा ज्ञान, इसलिए हटा 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 इसको नहीं खाना। तो ऐसा ज्ञान पक्का की जान करके, बिल्कुल हाँ माया ऐसी है, इसमें नहीं जाना, भगवान ऐसी इसमें जाना, तो जैसे वो निश्चयात्मक वाला, और भगवान से संबंधक ज्ञान और सेवा का ज्ञान, तीन दिन जानना ही पड़ेगा आपको। कई लोग कहते हैं गोपियों ने तो नहीं जाना, तब पर ही भगवत धाम गई, भगवत धाम में है, ऐसा नहीं है। गोपियों ने भी जाना, लेकिन वो जान करके भी नहीं जानती। गोपियां क्या है, वो जान करके भी नहीं जानती, क्योंकि यदि जान जाएंगी तो ऐश्वर्य आ जाएगा, फिर वो प्रेम समाप्त हो जाएगा। इसलिए गोपी गीत में लिखा है, नखल गोपिका नंदनो भवा नखिल देहिना मंतरात्मदृक। केवल आप गोपिका नंदन नहीं हो, आप यशोदा के पुत्र भर नहीं हो, आप अखिल देहधारियों की आत्मा हो, अंतरात्मा हो। लोग ये ज्ञान हुआ कि नहीं? अज्ञान में नहीं है गोपी लोग भी, लेकिन फिर भी भगवान के प्रेम में वो ऐश्वर्य ढक जाता, वो नहीं जानती कि ये भगवान है। तो इसलिए जानना भी पड़ेगा। कहते हैं कि दशरथ जी को भगवान ने, जब वो चले गए थे स्वर्ग, कुछ लोग कहते हैं, तो भगवान ने दोबारा उनको महात्मक ज्ञान कराया अपने विषय का, तब फिर वापस अयोध्या गए साकेत गए। तो इस प्रकार से इसको समझना है कि जिस समय जो शक्ति अधिक रहेगी उससे जो बनेगा। अब भगवान में जो ज्ञान है वो कैसे बनता है? जब विशुद्ध सत्व में संबित अनुभव से युक्त होता है, जिस समय विशुद्ध सत्व, उस समय भगवान की आत्मविद्या प्रकट होती है, उसको आत्मविद्या कहते हैं। जिस समय भगवान विशुद्ध सत्व जो स्वरूप शक्ति है उसके साथ सत संधनी अनुभव होता है, उस समय आधार शक्ति बनती है, मतलब बेस, पूरे गोलो कैसे टिकेंगे नहीं तो सब कुछ, वो उसको आधार शक्ति बोलते हैं। जिस समय चित्त में संधनी अनुभव होता है उस समय भगवान का जो लोक है, नाम रूप गुण लीला समस्त सब का विस्तार होता है, फटाफट होता है, पता ही नहीं चलता कितनी जल्दी हो गया। जिस समय चित्त में संधनी अनुभव होगा, तो चित्त में यदि तीनों रहेंगे, संधनी संबित अराधनी, तो क्या प्रकट होगा? मूर्ति। लेकिन चित्त में केवल एक रहेगा संधनी, तो केवल भगवान का जो लोक है, लोक निर्माण, वो प्रकट होगा, नाम रूप गुण लीला उनका धाम परव्योम चित्त में ही। जिस समय संबित रहेगा उस समय भगवान की सुंदरता, सौष्ठव, माधुर्यता ये प्रकट होती है। यदि संबित ना हो चित्त के साथ में, तो उस समय भगवान का विकराल रूप प्रकट होने लगेगा। लेकिन वो रहता है, इसलिए भगवान इतने सुंदर लगते हैं, ये जो उनमें सौंदर्यता है, इसलिए। तो चित्त के साथ में जिस समय संधनी हो गया, संबित हो गया, आह्लादनी प्रकट होती है, रहती है, अधिक रहती है उसकी मात्रा जिस समय, उस समय प्रेम स्वरूप प्रकट होता है, जिसकी सीमांत है श्रीमती राधा रानी। कहते हैं ना आह्लादनी शक्ति है, कौन? राधा। तो आह्लादनी शक्ति कैसे है? तो जिस समय स्वरूप शक्ति में, मतलब विशुद्ध सत्व का जो चित्त है, उसमें जब संधनी आह्लादनी रहता है, उस समय श्रीमती राधा रानी का विस्तार होता है। लेकिन राधा और कृष्ण दो अलग अलग चीज नहीं है, एक ही चीज है, दो देह हैं। चेतन चैतन्य में तो बोला ना चौथे अध्याय में आदि लीला में कि दो देह हैं अलग अलग, लेकिन चीज एक ही है, खाली लीला दृष्टि से भेद है बस। राधा रानी प्रेम का आश्रय है, श्री कृष्ण प्रेम का सब्जेक्ट है, विषय है। तो इस प्रकार से ये प्रकट होता है। यदि अब इसी प्रकार से जीवों में भी है, जीवों में क्या है, जीव शक्ति है, जीव को अणु कैसे बना, वो अणु से क्यों ना मोटा हो जाता, क्यों ना पतला हो जाता, लेकिन होता ही नहीं, वो एक प्रकार बना रहता है, अक्षुण्ण बना रहता है, अणु क्षुद्र रहता है। उसकी क्षुद्रता वाला गुण कहां से आया? तो जो तटस्था शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण है, उनमें जिस समय संधनी शक्ति होती है, उस समय ये जीव आता है। अभी आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो एक सिंपल सी बात, श्री कृष्ण का डायरेक्ट जो जीव है वो डायरेक्ट अंश नहीं है श्री कृष्ण का, इस बात को याद रख लेना। श्री कृष्ण कहते हैं ना ममैवांश जीव लोके जीव भूता सनातना, वेद स्तुति में भी बोला है, दसम स्कंद 87 अध्याय के 20वें श्लोक में, स्वकृत पुरेश्वमी स्वबहिरंतर संवरणम तव पुरुषम वदन्त्यखिल शक्तिधृतोऽंशकृतम्। तो आपकी शक्ति है, शक्ति होने के कारण उसको अंश कहते हैं, कोई टुकड़ा नहीं है, जैसे चीनी है, मिश्री है, उसका एक टुकड़ा है, ऐसा जीव नहीं है, वो शक्ति है, भगवान की एनर्जी है, वो शक्ति होने के कारण से उसको अंश कहते हैं। लेकिन यदि आप कहोगे कि वो श्री कृष्ण का डायरेक्ट अंश है, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि श्री कृष्ण में अलग अलग समय में अलग अलग शक्तियां विद्यमान रहती हैं। ये भागवत कहता है कैसे, जिस समय श्री कृष्ण पराशक्ति युक्त हैं, तीन शक्तियां हैं कि नहीं, पराशक्ति माने वही आह्लादनी शक्ति, स्वरूप शक्ति जो भी कहें, तटस्था शक्ति और बहिरंगा शक्ति। जिस समय श्री कृष्ण तटस्था शक्ति से युक्त हैं, उस समय का अंश है जीव। जिस समय श्री कृष्ण पराशक्ति से युक्त है, उस समय के सारे अंश हैं विष्णु। नहीं तो यदि हम श्री कृष्ण के पराशक्ति युक्त श्री कृष्ण के अंश होते, तो सारे विष्णु के गुण हमारे में होते, लेकिन नहीं है, केवल सच्चित आनंद है, बस है हमारे अंदर। हम सर्वज्ञ हैं क्या? नहीं, हम अल्पज्ञ हैं। हम सत्य संकल्प हैं? नहीं है। हम बिजर विमित्य विशोक कुछ भी नहीं हमारे अंदर गुण। तो हम लोग क्या है? तटस्था शक्ति विशिष्ट जब श्री कृष्ण होते हैं उस समय के अंश हैं। इसको और समझाता हूं, मोटी बुद्धि समझिए। जैसे एक जज है, जज जिस समय जज जजमेंट करता है उस समय वो किससे युक्त हो जाता है? उसकी दया आदि शक्तियां शांत हो जाती हैं, वो घर में काम करेंगी। लेकिन जिस समय वो कुर्सी में बैठा हुआ है जजमेंट करने के लिए, उस समय उसमें न्यायपरायणता की शक्ति आती है और जो समय निर्णय होता है उसी से वो चलता है सब कुछ। समझ में आया कि नहीं बात? एक ही जज है, वो घर में रहेगा तो दया कर देगा, लेकिन जिस समय वो न्यायपरायणता की कुर्सी में बैठा है उस समय वो शक्ति से युक्त है तो उस समय वो दया नहीं करेगा, जो भी सिद्धांत है न्याय है वो करेगा। तो इस प्रकार से ही जिस समय श्री कृष्ण तटस्था शक्ति से युक्त होते हैं उस समय का अंश है जीव। यदि कहोगे कि पराशक्ति युक्त श्री कृष्ण का अंश है जीव, तो पराशक्ति युक्त तो विष्णु और स्वांश कहलाएगा, विभिन्नांश नहीं कहलाएगा। विभिन्नांश और स्वांश को ऐसे ही समझना है। स्वांश माने जितने पराशक्ति से युक्त हैं वो स्वांश हैं, और जितने विभिन्नांश हैं वो सब तटस्था शक्ति विशिष्ट हैं। अब माया को देख लो, माया भी तो भगवान की शक्ति है। अब भगवान कैसे हैं? चेतन। अब माया कैसी है? अचेतन, जड़। ये कैसे हो गया? अरे सोने का जो कुंडल है वो सोने का सोना ही है कि नहीं? उसके अंदर सोना ही सोना है। तो जब चेतन से जो पदार्थ आएगा उसको चेतन ही होना चाहिए, अचेतन कैसे हो गया? तो भगवान श्री कृष्ण अचेतन कैसे हैं? वो तो चेतन है। अचेतन से जो आई माया उसमें भी चेतनता रहनी चाहिए, लेकिन माया क्या रहती है? जड़। वो कैसी रहती है? क्योंकि जिस समय श्री कृष्ण माया शक्ति विशिष्ट होते हैं उस समय की शक्ति है माया, पराशक्ति और तटस्थ शक्ति नहीं। जिस समय माया शक्ति उनके अंदर विशेष रूप से विद्यमान होगी उस समय की अंश है माया, इसलिए ऐसा होता है। समझ में आया कि नहीं? देखो सिंपल सी बात है, हमारे अंदर भी ऐसी विविधता है तो भगवान में क्यों नहीं होगी? हमारे अंदर हमारा शरीर चेतन है कि नहीं? काम कर रहा है ना, उठता बैठता सब करता है। लेकिन हमारा नाखून नेल इसको काटो दर्द होता है? नहीं होता। लो इस माया वाले शरीर में इतनी विविधता आ गई, बाल को काटो शिखा को काटो दर्द होगा? नहीं होगा, चेतन जड़ है। चेतन शरीर से निकला हुआ पदार्थ चेतन हो सकता है। दूसरा उदाहरण लाइट है, लाइट अग्नि, अग्नि जलती है, आग। आग के दो गुण हैं, एक आग क्या करती है? ताप करती है, गर्म करती है, और दूसरा गुण क्या है? प्रकाश करती है। अब देखो एक ही अग्नि के दो दो अलग अलग गुण हैं। अग्नि में ताप भी रह रहा है और प्रकाश करने की शक्ति, लेकिन प्रकाश किसी को जलाता नहीं, किसी को जलाता क्या? लेकिन ताप जला देता है। तो जब इस माया में ऐसी विविधता है तो भगवान में होना क्या आश्चर्य है? भागवत में चौथे स्कंद के नौवें अध्याय के 16वें श्लोक में ध्रुव महाराज कहते हैं कि यस्मिन निरुद्ध गतयो हेनिशम पतंती। निरुद्ध गति है माने एक दूसरे से विरोधी है, चेतन जड़ अलग अलग है लेकिन भगवान में है। अतर्क सहस्र शक्ति, भागवत 3:33 में भी कहा गया कि भगवान असहस अतर्क शक्ति वाले हैं। असहस्र एक ही भगवान में अलग अलग प्रकार की शक्तियां हैं। वेदांत सूत्र में भी कहा गया है, दूसरे अध्याय के पहले पाद के 27वें सूत्र में कि आत्मनि ही चैवम विविदास चही, माने भगवान में विविध विविध शक्तियां हैं, चेतन भी हैं जड़ भी हैं। ये भागवत कह रही है। और भी कई जगह, बहुत सारी जगह, इतना समय नहीं बताने के लिए भागवत में। अरे हिरण्यकश्यप आप लोग पढ़ लिए पहले अध्याय में, इसी में 7वें स्कंद के 3रे अध्याय में 34वें श्लोक में क्या बोलता है? चित अचित शक्ति युक्ताय भगवते नमः, 7:3:34 में, कि भगवान कैसे हैं? चित और अचित शक्ति से युक्त हैं। लो हिरण्यकश्यप भी बोल दिया, असुर है फिर भी उसको भी ज्ञान है कि चित आपके कैसे हो गया, मैं आपको बता दिया। इसी प्रकार से जीव में भी एक एक क्रम से यदि शक्तियां होती हैं तो जीव का ज्ञान होता है, जीव का मोक्ष होता है। माया भी जड़ है, अपने आप से कुछ नहीं करती। माया में भी जब संधिनी शक्ति युक्त होती है, माया शक्ति, उस समय वो निर्माण करती है जगत का। चिंता शोक, जिस समय माया में संबित शक्ति अधिक होती है तो चिंता शोक टेंशन ये सब पैदा होते हैं, क्योंकि माया का ही तो अंश माया है, मन है ना। जिस समय हलादनी होगी माया के साथ, उस समय माइक सुख का अनुभव होगा, रसगुल्ला खाया, हाँ अच्छा मीठा तो है, भले तत्कालिक है, वो कैसे पैदा हुआ, वो उसके अंश से, लेकिन वो माइक ही रहेगा क्योंकि माया विशिष्ट हो गया। इसलिए तो ऐसा जो विशुद्ध सत्व है, ये अचिंत चीजें हैं, इनको बार बार सुनने से समझ में आती हैं, एक बार में ऐसे समझ में नहीं आता पूरा पूरा, लेकिन फिर भी आप लोगों को उदाहरण देके समझाए, इससे आप समझ सकते हो जज के उदाहरण से, है ना। अब देखो इस भगवान में भी, ये तो शक्तियों का हेरा फेरी हो गई, अब भगवान के स्वरूप में भी ब्रह्म परमात्मा और भगवान तीन स्वरूप हैं, सबको पता है। और ये जो शक्तिवाद है, कुछ लोग जो मायावादी हैं, शंकराचार्य आदि और उनके अनुयायी, वो लोग कहते हैं कि ये काल्पनिक शक्ति है और हम इस शक्ति को नहीं मानते, वो मानते ही नहीं इस शक्तिवाद को, नहीं मानते, बोलते हैं ब्रह्म निःशक्तिक है, निरी है, कोई इच्छा है ही नहीं ब्रह्म की, शक्ति है ही नहीं उसमें। आप कहते हैं शक्ति है, चैतन्य महाप्रभु ने शक्ति माना है, जीव गोस्वामी ने शक्ति माना है, प्रभुपाद जितने भी प्रचार हैं सब मानते हैं, वेद में भी इसका प्रमाण है, लेकिन वो लोग नहीं मानते, बताइए आश्चर्य है। और कहीं कहीं शंकराचार्य जी ने माना भी है। वेद में एक ऋग्वेद का, राधिकोपनिषद का एक बहुत बड़ा मंत्र है जिसमें भगवान श्री कृष्ण को परब्रह्म कहा गया, परब्रह्म, और उसमें अलग अलग शक्तियां माना है, लेकिन ये कुछ लोग हैं इनका अपना अभिमान है जिसकी वजह से लोग नहीं मानते। वो मंत्र कहता है, कृष्णो हवई हरि परमो देवा षड विधैश्वर्य परिपूर्णो भगवान गोपी गोप सेव्यो वृंदाधितो वृंदावनाधिनाथ स एक एवेश्वरा तस्य हवई तनुर द्वे नारायणो अखिल ब्रह्मांडाधिपतिरेको अंश तस्य शक्तिस्तु अनेकधा हलादिनी संदिनी ज्ञानेच्छा क्रियाद्याः तासु अहलादिनी वरीयसी परमांतरंग भूता कृष्णेन आराध्यते इति राधा। वेद का मंत्र है, ऋग्वेद का, कि उसमें भी बोला गया कि कृष्ण के द्वारा राधा की आराधना होती है, कृष्ण की अलग अलग शक्तियां हैं, कृष्ण का ही तनु है नारायण विलास, जिसको रूप गोस्वामी ने लिखा लघु भागवतम रत में, तो सब भगवान श्री कृष्ण ही परम भगवान है, ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है, उसी के अंश हैं अलग अलग शक्तियां जितनी भी हैं, उससे परे कुछ भी नहीं है, और उनके ज्ञान से ही सब कुछ का ज्ञान होगा। तो इसीलिए वो श्री कृष्णा परम रस, जिसको रस तमह रसराज कहते हैं, उससे बड़ा रस है ही नहीं किसी में। तो ऐसे श्री कृष्ण हैं और उनके ही अंश जो नरसिंहदेव भगवान हैं। तो इस प्रकार से जो विशुद्ध सत्व है वो बड़ा ही दिव्य है। जब हम साधना भक्ति करेंगे, ये कब प्रकट होता है हमारे अंदर, जब हम साधना भक्ति मतलब श्रवण कीर्तन आदि अच्छे से करेंगे, तब विशुद्ध सत्व का आविर्भाव होगा। अब विशुद्ध सत्व के ही वो भाव रूप में परिणत हो जाता है, और वही भाव फिर प्रेम रूप में, भाव और प्रेम में अंतर है याद रखना, भाव सूर्य की किरण के जैसे है, अब प्रेम सूर्य मंडल है, आता ना, पहले सूर्य आने के पहले उसकी किरण दिखाई पड़ती है फिर सूर्य, ऐसे ही भाव और प्रेम। तो इस प्रकार से अब भगवान के भी स्वरूपों में अलग अलग अंतर है बहुत सारा। भगवान के जितने भी स्वरूप हैं, अब जैसे श्री कृष्ण है, अब श्री कृष्ण स्वयं जो राधा और कृष्ण वो निभृत निकुंज में है, उनके नीचे निकुंज है जहां पर ललिता विशाखा आदि श्री राधा कृष्ण की सेवा करती हैं, उसके नीचे कुंज है जहां पर जो साधक गण हैं और भी अन्य अन्य गोप गण हैं, वो लोग जो लोग यहां से भक्ति करके गए हैं समर्थारति वाले भक्त वहां पर हैं, उससे भी नीचे जो द्वारका वाला श्री कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण है, जहां पर दस्य साख्य वात्सल्य आदि भाव है वो है, उसके भी नीचे मथुरा वाला श्री कृष्ण है जहां पर माधुर्य और ऐश्वर्य दोनों है लेकिन माधुर्य ज्यादा है, फिर उसके नीचे द्वारका वाला श्री कृष्ण है जहां पर ऐश्वर्य भी है माधुर्य भी है, उसके नीचे जो ये वैकुंठ में केवल ऐश्वर्य माधुर्य बहुत कम मात्रा में, बहुत कम, केवल ऐश्वर्य ऐश्वर्य, वहां पर वो प्रेम का उस प्रकार का स्वरूप नहीं है। इसलिए लक्ष्मी जी को सेकेंड नंबर की भक्त बोला जाता है, क्योंकि वो समंजसा रति की भक्त है, माने अपने सुख की भी इच्छा करती हैं और भगवान भी सुखी हो जाए ऐसी भी इच्छा करती हैं। लेकिन गोपियां केवल कृष्ण सुखी हो यही इच्छा रखती हैं, इसीलिए उनका स्थान ऊपर है। उसके भी नीचे, वैकुंठ के नीचे ब्रह्मानंद, जो कि ज्ञानियों को प्राप्त होता है, और ज्ञानियों में भी जो ब्रह्म की उपासना करता है उसको, जो आत्मा को ही ब्रह्म मानता है उसको नहीं, क्योंकि वो उसका भ्रम रहता है। देखो एक सिंपल सी बात, भगवान ने भागवत में बोला है 11वें स्कंद के 25वें अध्याय के 29वें श्लोक में, ज्ञानी लोग क्या करते हैं कि मैं ब्रह्म हूं मैं ब्रह्म हूं ऐसा विचार वो अपने मन में ही करते रहते हैं। और आपको पता है ज्ञान कैसे पैदा होता है? सत्वगुण से। आत्मा का जो ज्ञान है वो सात्विक ज्ञान है, और सात्विक ज्ञान मतलब माया का ज्ञान। सत्वगुण किसका है? माया का। तो मतलब ज्ञानी को भी अभी सत्वगुण में मतलब माया का ज्ञान है, भगवान का ज्ञान नहीं है। देखो एक समुद्र का ज्ञान करना और एक समुद्र की एक बूंद का ज्ञान करना, दोनों में अंतर है कि नहीं? एक बूंद में आपको हीरे जवाहरात किसी का ज्ञान नहीं होगा, और समुद्र की निधि का ज्ञान नहीं होगा, लेकिन वहां पर समुद्र में के अंदर का ज्ञान, सारे मछली जितने भी है उसके अंदर रहने वाले जलचर सबका ज्ञान हो जाएगा। ऐसे ही जो आत्मक ज्ञान जो होता है, भगवान ने उद्धव से कहा कि आत्मोत्थम तो सात्विकम, जो आत्मा से जो उत्पन्न ज्ञान है वो तो सात्विक है, माईक है। अज्ञानी लोग इसी भ्रम में पड़े रहते कि हमको ज्ञान हो गया, हम संसार से मुक्त हो गए। उनका मुक्त होना कैसा है? जैसे कोई व्यक्ति मधुमक्खी के डर से किसी तालाब में घुस जाए, कितने देर तालाब में रहेगा, और फिर वापस आएगा तो फिर मधुमक्खी अटैक कर देंगी। तो माया का जो अविद्या है, माने तमोगुण रजोगुण, उससे मुक्त होकर के विद्या माया में आ गया। माया दो प्रकार की है, एक विद्या माया एक अविद्या माया, उसी को बोलते हैं गुण माया एक जीव माया, उसी को बोलते हैं स्वरूपावरिका माया, उसी को बोलते हैं गुणावरिका माया। तो ज्ञानी लोग जो हैं स्वरूपावरिका माया को पार कर लेते हैं, मतलब अपने ज्ञान से सत्वगुण में आ जाते हैं। मैं ये देह नहीं हूं ऐसा ज्ञान हो जाना, स्वरूप आवरण से मुक्त हो जाना है कि मैं ये देह नहीं हूं बस। लेकिन इसके ऊपर जो सत्वगुण वाला ज्ञान है गुण की माया, उससे उसके ऊपर क्योंकि महातत्व है फिर प्रकृति है, उसको पार नहीं कर पाता वो ज्ञानी, वो सत्वगुण में ही डूबा रहता है। और जिस दिन, इसीलिए भागवत में लिखा है कि आरुह्य कृष्णेण परम पदम तथा पदंत, ये श्लोक इसलिए है, इस श्लोक का और अर्थ नहीं निकालना, इसका अर्थ यही निकालना है कि ज्ञानी कैसे पतन होते हैं। तो ये नहीं कि मतलब ब्रह्म ज्ञान में चले गए और उसके बाद पतन होता, ऐसा नहीं, वो आत्मज्ञान में लीन रहते कि हाँ मुझे ज्ञान है ऐसे ब्रह्म है, माने माया के ज्ञान में, और उसी से ही उसका नीचे गिराव हो जाता है, पतन हो जाता है। कब? जैसे वही मधुमक्खी बताया, किसी के पीछे लग गई कोई जाकर के, तो उस पानी में डूब गया, और जितना देर डूबा रहा जैसे ही निकलेगा तो फिर अटैक हो जाएगा, तो माया का अटैक पुनः हो जाएगा, पुनः उनका पतन हो जाएगा। तो इसीलिए ऐसा है, तो भगवान तो ब्रह्म ज्ञान है, उनको ज्ञान नहीं है, आत्मक ज्ञान बोलो, ब्रह्म ज्ञान तो हुआ ही नहीं है। ब्रह्म ज्ञान तो, ब्रह्म तो आत्मा से अलग चीज है। तो ब्रह्म परमात्मा और भगवान, अब इस विशुद्ध सत्व में भी तीन अभिव्यक्ति हैं उसकी। आप लोगों ने बहुत सूर्य का उदाहरण सुना, आज एक नया उदाहरण बता रहा हूं। पानी देखा, बर्फ देखा और भाप देखो, है कि नहीं? पानी बर्फ और भाप प्रयोग की दृष्टि से तीनों अलग अलग हैं, लेकिन है एक ही। उसी पानी से भाप बनता, उसी पानी से बर्फ बनता है ना। तो इसीलिए ये नहीं कहना है। तो ब्रह्म में केवल सत्ता मात्र है और स्वरूपानंद है, लेकिन परमात्मा में सत्ता मात्र है, हाँ है बस, ऐसी कोई चीज है, और स्वरूपानंद है। अब परमात्मा भी ये दोनों हैं, और लीला कोई प्रकट नहीं है, बस चतुर्भुज रूप में है। लेकिन जो भगवान है उसमें सत्ता भी है, स्वरूपानंद भी है, और लीला पूरे परिकर भी है, ये अंतर है। इतना बड़ा अंतर है इसमें। अरे गुलाब देखें, गुलाब का फूल, गुलाब के फूल में दो चीज है, एक तो फूल है और एक उसकी डंठल है। डंठल में कोई सुगंध है? किसी काम के नहीं। उसी फूल में सुगंध है, आया कि उसी से है, दोनों एक ही चीज है, लेकिन उसमें सुगंध बेकार है, फिर वो डंठल बेकार हमारे काम का। अब चंदन के पेड़ में देखो, जो चंदन है उसमें फूल ही नहीं है, केवल सुगंध सुगंध है। अब फूल होता तो बताइए क्या नहीं हो जाता। तो ब्रह्म में थोड़ा स्वरूपानंद है, लेकिन वो चीज नहीं है जो भगवान में है। अरे गन्ना है, गुड़ बनता है, गुड़ उसी गुड़ को, उसी गुड़ से निकृष्ट थोड़ी शक्कर, उसी शक्कर से थोड़ी चीनी, उसी चीनी से और उत्तम मिश्री, चीज एक ही है, सब वही गन्ने से बने हुए चारों पदार्थ हैं, तीनों चारों एक ही हैं, लेकिन स्वाद की दृष्टि में अलग अलग है। आप बताओ आप लोग किसको लोगे? तो ज्ञानी लोग देखो उनको ज्ञान नहीं है उसका, इसीलिए वो ब्रह्म की उपासना करते हैं। भगवान का इतना अच्छा विशुद्ध सत्वात्मक स्वरूप है, उसको भूल जाते हैं। उसको छोड़ो, किसी स्त्री के पेट में बच्चा है तो उसको अच्छा तो लगता है, लेकिन वही बच्चा जब बाहर प्रकट होता है तो और अच्छा लगता है। तो ऐसे निर्विशेष जो निर्गुण रूप है भगवान का, वो ऐसा ही है, उसमें कोई रस नहीं, कोई आनंद नहीं है जो लेने लायक हो आपके, वो अपने आप में है बस उसका आनंद, दूसरों को कुछ नहीं दे सकता है। तो इस प्रकार से अलग अलग बहुत सारे उदाहरण, बहुत सारे तरीके हैं समझाने के, लेकिन इतना समझ लो कि जो भगवान का जो स्वरूप होता है वो इस प्रकार से बनता है, लेकिन ये मत कहना किसी दिन बना, बस सदा से है, जिस दिन बना जाए जो भी बना ऐसे बना, लेकिन किस दिन बना ये क्वेश्चन नहीं, ये क्वेश्चन नहीं हो सकता है, ये क्वेश्चन ही रहने दो, इसका कोई आंसर नहीं हो सकता, क्वेश्चन ही नहीं हो सकता। बाकी जितनी चीजें सब उनसे बनी है, लेकिन उनका कोई कारण नहीं है। सकारणम कारणाधिपाधिप वेद कहता है कि वो कारण है सबका, उसका कोई कारण नहीं है। निरस्त साम्याने, निरस्त साम्यादि सहेन राधसा, सब उसके बराबर कुछ नहीं है, उसके बराबर तो उसके ऊंचे क्या होगा, सुखदेव गोस्वामी 2.4.14 में। तो इस प्रकार से ये स्वरूप है भगवान के अलग अलग। तो भगवान का इतना अच्छा सौष्ठव है, और जब वो प्रकट होता है तो अच्छे अच्छों को अट्रैक्ट कर देता है, देखो परमहंसों तक को अट्रैक्ट करता है, उनको धराशायी कर देता है, मूर्छित कर देता है। सुखदेव गोस्वामी को देखिए, भगवान के स्वरूप के विषय में जब सुना, बरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद वास कनक कपिशम वैजयंती च मालाम रंध्रान वेणोरधर सुदया पूरयन गोप वृंदैर वृंदारण्यम सुपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। जब ऐसा सुना कि भगवान का ऐसा दिव्य स्वरूप, मोर पुच्छ लगाए हुए हैं वृंदावन की ओर, सब बालकों के साथ में आ रहे हैं और गोपियां उनकी कीर्ति का गान करे जा रही हैं, तो जब ऐसा सुना, जैसे ही सुखदेव गोस्वामी तुरंत उठ गए, तुरंत उनका ब्रह्मानंद नष्ट हो गया, खत्म, ब्रह्मानंद समाप्त। अब आ गए, क्या है भाई ऐसा कौन व्यक्ति है दिखाओ। तब आगे सुखदेव गोस्वामी फिर दूसरा श्लोक सुनकर अहो बकीयम, कि भगवान बड़े कृपालु हैं, ये किसने पढ़ाया। जब उनसे पूछा व्यास के शिष्यों से, तो उन्होंने बताया कि ये आपके पिता और हमारे गुरुजी ने पढ़ाया, उनके पास और भी अच्छे अच्छे हैं श्लोक। चलो ये तो स्वरूप सुन करके, सनत कुमार तो स्वरूप बिना सुने भगवान के केवल चरणों की तुलसी को सूंघ करके उनका जो ब्रह्मानंद है वो नष्ट हो गया था, है ना, सुना होगा। तस्यारविंद नयनस्य पदारविंदयो किंजल कमिश्र तुलसी मकरंद वायु संक्षोभम चकार तेषाम, है ना, कि उनका संक्षोभ कर दिया, माने उनके हृदय में विचलन पैदा कर दिया। तो सोचो भगवान के चरणों की तुलसी ऐसी कर सकती है, तो स्वरूप क्या नहीं कर देगा। तो इस प्रकार से यहां पर इसलिए प्रभुपाद ने बोला कि जब भगवान प्रकट होते हैं तो सारे के सारे स्वरूप क्या हो जाते हैं, जितने माया के स्वरूप बनाए गए हैं सब जीरो पड़ जाते हैं उनके सामने, उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। ब्रह्मा भी मोहित हो जाते हैं, सब मोहित हो जाते हैं। ब्रह्म स्तुति में आप स्तुति पढ़िए, कितनी अच्छी ब्रह्मा जी बोलते हैं भगवान के स्वरूप के विषय में। तो इसलिए यहां पर जो विशेष भगवान के, लेकिन अवतारों में भी आपको दो चीज और समझ लेनी चाहिए कि जो अवतार होते जिनमें आवेश होता है, भगवान के अवतार में जिसमें ज्यादा आवेश होगा वो अवतार कहेगा मैं भगवान हूं, किसी मतलब किसी जीव में, जैसे ऋषभ देव वो भी जीव है लेकिन उनमें अधिक आवेश है तो कहते हैं मैं भगवान हूं, इसलिए भगवान करके बोला ना भागवत में 5वें अध्याय में 5वें स्कंद के, अपने आप को ही वासुदेव बता दिया। और जिस जीव महान जीव में अल्प शक्ति है, भगवान का अल्प आवेश है, वो लोग भगवान अपने आप को भक्त बताते हैं, जैसे नारद हैं, सनत कुमार हैं, ये ऐसे लोग हैं, परशुराम हैं और पृथु हैं। तो ऐसे भी कुछ अवतार होते हैं। तो ये थोड़ा सा सूक्ष्म रूप से अवतार का रहस्य है, ये जो कि यहां पर बताया कि अवतार कैसा होता है भगवान का, उसके विषय में हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। वस्तुतः ये बोलने का विषय नहीं है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, भगवान के विषय में ठीक ठीक कोई नहीं बोल सकता, कोई भी। हम लोग कहते हैं ना भगवान कमल नयन, कर कमल, पाद कमल, सब कमल जैसे, ये पूरा नहीं है कि कमल जैसे ही है। कमल तो माइक पदार्थ है, लेकिन जो आचार्य हैं जिन्होंने भगवान का दर्शन किया है तो उन्होंने बता दिया कि ऐसा है, लेकिन ऐसा नहीं है, उससे भी कई गुना अनंत गुना अधिक माधुर्यमय है वो। तो अब कुछ बचा ही नहीं बताने के लिए, कुछ है नहीं तो क्या बताएं। तो जो पृथ्वी में सबसे ज्यादा सुंदर चीज है उसको बता दिए, उससे कोई चीज और बड़ी होती तो वो बताते, कमल नयन कहकर के और कुछ कहते। लेकिन इसीलिए कहा क्योंकि महापुरुषों, अब जिसने रसगुल्ला खाया, अब रसगुल्ला खाया तो अगूंगे ने खा लिया, अब वो क्या बताएगा कैसा है मीठा। तो नारद भक्ति सूत्र में नारद जी ने एक सूत्र लिखा है, मुंह का स्वादन वत। मुंह का स्वादन वत माने वो भगवान की मधुरिमा ऐसी है कि जो देख लेगा वो बोल नहीं पाएगा, क्योंकि वो मुंह जैसे गूंगा व्यक्ति कुछ रसगुल्ला आदि खा ले तो उसको पूछो कैसा है। अब मान लो कोई बता भी दे सही व्यक्ति मीठा है, स्वीट है, तो स्वी और टा कहने से आपको मीठे का ज्ञान हो जाएगा? आपने कभी खाया ही नहीं तो कहां से ज्ञान हो जाएगा। कीड़े का कोई कड़वा खाने वाला व्यक्ति उसको बताओ रसगुल्ला इतना मीठा होता है, ऐसा होता है, तो क्या जाने। हमने मधुरिमा लिया ही नहीं कृष्ण की, अभी हम तो माया वाले आनंद को ढूंढ रहे हैं, कृष्ण वाले आनंद को तो ढूंढ ही नहीं रहे हैं। जब कृष्ण में कृष्ण को ढूंढेंगे तब उनका आनंद मिलेगा, अभी हमको अभी मिला नहीं है, मिलेगा। कह देते हैं कि प्रेम से सेवा करो, अभी प्रेम मिला ही नहीं तो सेवा क्या करेंगे। तो प्रेम इसलिए चाहिए सेवा करने के लिए, तो अभी तो प्रेम तो बहुत ऊंचा, अभी तो साधन अवस्था में, अभी तो भाव नहीं आया, फिर प्रेम आएगा तो। लेकिन अभी फिर भी उस प्रेम का अनुकरण करना है साधन अवस्था में भी। तो इस प्रकार से वो नारद जी ने बोला मुंह का साधन बत। हम लोग भगवान के स्वरूप के विषय में कुछ नहीं बोल सकते, कुछ भी। ये तो जो भी कहा सुना गया, जो आचार्य हैं उन्होंने अपने अनुभव के अनुसार, साक्षात के अनुसार बताया, इतना सुंदर, इतना सुंदर, कितना सुंदर। बस एक मैं निश्चित कर दिया, कमल जैसे हैं। कमल जैसे नहीं, उससे अनंत गुना अधिक हैं। कुछ है ही नहीं बताने के लिए। अभी जिसने कभी नदी देखा ही नहीं, अब उसको बताओ नदी कैसी होती है। हाँ, तो तालाब वो नाली देखी छोटी सी, हाँ देखी, बस उसी नाली का बड़ा रूप है, बस उसको बता करके ना उसका ज्ञान कराया जाता है। तो ऐसे ही कमल जैसे बता करके, लेकिन वही है ऐसा नहीं है। तो यद वाचा निवर्तन्ते, तैत्तिरीय उपनिषद 2:4 और 2:9 में ये मंत्र है, ब्रह्मोपनिषद में भी ये मंत्र है, सांडिल्य उपनिषद में भी ये मंत्र है, भागवत में भी है, तीसरे स्कंद में भी है ये मंत्र, 23वें अध्याय में अंतिम श्लोक है, 23वें में शायद अंतिम है, थोड़ा सेम अनुवाद वही है, या तो वाचो निवर्तन्ते ऐसा ही है कि जिस जहां पहुंच करके वाणी वापस बोल नहीं सकती, देख भी लिया चुप, मन जिसके विषय में सोच नहीं सकता, क्योंकि जो मन सोच रहा है वो माया का है। मन तो माया कितना सोचेगा, जितनी बड़ी माया उतना ही सोचेगा, उससे ज्यादा तो सोच ही नहीं सकता। तो जब माया से भगवान की विशुद्ध सत्व आकर के जब उसको दिव्य बना देगा मन को, जब उसमें शक्ति आ जाएगी, तब वो फिर विचार करेगा कृष्ण के विषय में, तब भक्ति करेगा असली वाली। उसके पहले तो हम साधना में करते रहेंगे, मन तो माया का है ना, तो कैसे कृष्ण को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए साधन भक्ति करने के बाद अंतःकरण शुद्ध हो जाने पर भी कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का योग्य नहीं बनता। हृदय पूरा पूरा कामना वासना से रहित हो जाए, बिल्कुल स्वच्छ क्लीन हो जाए, तब पर भी योग्य नहीं, वो तो कृष्ण का प्रेम है। वो विशुद्ध सत्व आकर के पहले दिव्य बनेगा, क्योंकि अभी माया की चीज है ना, चीज तो माया की ही है, भले वो साफ हो गई, है तो माया का पदार्थ। तो अब वो जब दिव्य होगा तब कृष्ण प्रेम आएगा। तो इस प्रकार से यहां पर संक्षेप में बहुत सारी बातें हैं, मुझे जितनी स्मरण में आई दिमाग में वो यहां पर बता दिया, लेकिन इतना ही नहीं है, इससे कई गुना अधिक है, हम लोग बोल नहीं सकते, हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं है। तो इस प्रकार से समय हो चुका है, ज्यादा ही हो गया है, अधिक समय के लिए क्षमा याचना करता हूं सबसे। जिसका कोई प्रश्न हो व्यक्तिगत रूप से पूछे, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट का समाप्त। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। वैसे तो श्रीवास पंडित का भी आज आविर्भाव है, मुझे ध्यान से पूरा निकल गया। यदि आप लोग कहें तो 5 मिनट उनके विषय बोलो। कमांडर हमारे 5 मिनट, हाँ चलो ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। तो देखिए, इस संकीर्तन मूवमेंट में 5 तत्व हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। ये 5 चैतन्य चैतन्यमत में लिखा है कि वस्तुतः ये 5 हैं, लेकिन है एक ही। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अनुभाष्य में उसके लिखा है कि ये जो 5 तत्व में 3 तो भगवत तत्व हैं शुरू के, और लास्ट के 2 गदाधर और श्रीवास पंडित ये शक्ति तत्व, अंतरंगा शक्ति के हैं। एक नारद जी, श्रीवास पंडित नारद जी के अवतार है ना, किनके हैं, नारद के, वो भी शक्ति तत्व हैं। लेकिन श्रीवास पंडित का जो योगदान है आज इस संकीर्तन मूवमेंट जो चल रहा है, उनकी विशेष जो सहायता थी चैतन्य महाप्रभु को, उसके कारण से। आप लोगों ने कथा कई बार सुना है, लेकिन फिर भी एक बार याद दिला दूं, जो संकीर्तन मूवमेंट जो प्रारंभ हुआ श्रीवास आंगन से ही हुआ है ना, जो मृदंग तोड़ा गया काजी के द्वारा, वो भी वहीं तोड़ा गया, करने नहीं देता था ना, तो श्रीवास पंडित फिर भी, लेकिन चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन आगे बढ़ता ही जाए बढ़ता जाए, इसके लिए वो सदा प्रयासरत रहते थे सदा। एक बार छोटी सी घटना है उनके घर की, कि जब उनके घर में कीर्तन हो रहा था तो उनका एक पुत्र था, बहुत कम उम्र थी, छोटा बच्चा था, तो चैतन्य महाप्रभु आए थे कीर्तन करने के लिए। चैतन्य महाप्रभु जो अपने भाव में रहते थे कीर्तन करते समय, और यदि थोड़ा सा भी कहीं गड़बड़ ऐसा शोक या कहीं पर ऐसा दिखाई दे तो उनको पता चल जाता था, रसा भास होता था उनको। तो एक बार जब श्रीवास पंडित के घर पर जब कीर्तन हो रहा था और चैतन्य महाप्रभु आ गए, सब कुछ आ गया, और श्रीवास पंडित ने, उनका पुत्र पहले ही मर चुका था, और वो चैतन्य महाप्रभु जब आ गए तो उनको पता ना चले, इसलिए श्रीवास पंडित, देखिए ऐसा व्यक्ति कोई हो नहीं सकता भौतिक जगत में कि संकीर्तन ना रुके, इसलिए अपनी पत्नी को और जितने भी लोग रो रहे थे बोला कि यदि तुम लोगों ने महाप्रभु कीर्तन में विघ्न किया, यदि रुदन किया, तो मैं जाकर के क्या करूंगा, गंगा में जाकर के डूब जाऊंगा, वहीं आत्मदाह कर लूंगा। कीर्तन नहीं रुकना चाहिए, ना तो किसी भी प्रकार से महाप्रभु को भनक लगनी चाहिए कि यहां पर कुछ अशुभ हो गया है, उनके कीर्तन में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आना चाहिए। ऐसे सहायक थे वो, ऐसे पार्षद थे, अंतरंग। सोचिए हम लोगों के यहां ऐसा हो सकता है, कीर्तन रोक देंगे आज, यदि कोई मर गए घर में, नहीं प्रभु जी आज मत आओ, किसी दिन और कीर्तन रखाएंगे, है कि नहीं। या कि राम राम सत्य जब मरते हैं तब कहते हैं, और जाग गया तब अब मत बोलना कहीं जाग ना जाए आदमी, ऐसे तो लोग हैं। राम नाम सत्य है, सत्य कहते हैं, सत्य बोले गत्य है, और जैसे ही जिंदा हो जाए तब कहेंगे अब मत बोलना, ये तो केवल मरे में बोला जाता है। तो लेकिन श्रीवास पंडित के यहाँ पर ऐसा बोलते हैं ना लोग, नहीं उठ खड़ा ना हो जाए, कहीं कुछ हो ना जाए, दोबारा ना मर, इसलिए मत बोलो। लेकिन श्रीवास पंडित इतने दिव्य थे कि जब वो ऐसा हुआ, लेकिन वो जब बाहर आ गए तो थोड़ा तो मुंह लटका था, क्योंकि उनके मन में संशय था कि चेता, ये नहीं था कि दुख था पुत्र के मरने का, बिल्कुल दुख नहीं था, उनको ये लग रहा था कि कहीं चैतन्य महाप्रभु को मालूम न पड़ जाए, बस उनके मन में यही घूम रहा था कि पता न चल जाए, कीर्तन में गड़बड़ी न हो जाए, बाधा न उत्पन्न हो, बस इतना सोच रहे थे। तो उसको देख देख करके जब वो कीर्तन में चैतन्य महाप्रभु को आभास हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है, और कुछ गड़बड़ इसलिए मुझे आज मजा नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा पता नहीं। तब चैतन्य महाप्रभु ने पूछा किसी से, और तब किसी ने उनको बताया, किसी ने बताया था है ना, कि श्रीवास पंडित का जो पुत्र है उसका देहांत हो गया है। तब चैतन्य महाप्रभु दौड़ करके, जैसे उनको पता चला, तो जहां पर पुत्र पड़ा हुआ था हमारा अंदर कमरे में, वहां पर गए और बहुत जम के चिल्लाए, बोले तुम जा नहीं सकते हो छोड़कर श्रीवास को, श्रीवास जैसे भक्त को छोड़कर तुम नहीं जा सकते हो, ऐसे चैतन्य महाप्रभु जम जम करके चिल्लाए, बोले तुमको वापस आना पड़ेगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने लीला किया ज्ञान कराने के लिए, श्रीवास पंडित को तो सब कुछ पता है, लेकिन अन्य जो परिजन हैं क्योंकि सब तो अंतरंग नहीं थे उसमें, कुछ अंतरंग थे, कुछ बहिरंग भी थे पार्षदों में, तो उनको भी जो भगवत तत्व का ज्ञान कराने के लिए कि शोक ना हो, इसीलिए उन्होंने क्या किया, उस पुत्र को जीवित कर दिया था ना, तो जीवित कर दिया, बस हाथ पेरा वो जीवित होगा। जैसे जीवित हुआ बस, जैसे चित्रकेतु के पुत्र ने उपदेश दिया था ना, कौन है आप, कौन माता पिता, कौन से पिछले अभी जहां से मैं आ रहा हूं मेरे को लेकर आ रहे हो नारद जी, वहां भी माता पिता है, वो लोग रो रहे होंगे, वो है कि ये है, बताओ कौन से पक्का करूं, इसके पहले भी कई हो चुके हैं माता पिता, उनको मानूं कि जो प्रेजेंट में है इनको मानूं, बताओ कौन है। तो चित्रकेतु के पुत्र ने जैसे आकर ज्ञान दिया, उसी प्रकार से वो जब पुत्र हुआ तो बस वो ऐसे ही कहने लगा, और उसके बाद वो ज्ञान चेतन महाप्रभु उसके माध्यम से सबको ज्ञान कराना चाह रहे थे थोड़ा सा तत्वों का, तो ऐसा कर दिए। तो इस प्रकार से जो पंच तत्व हैं वो अभिन्न ही है, बस लीला दृष्टि से अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, लेकिन रसास्वादन मात्र के लिए। तो उनमें जो श्रीवास पंडित हैं उनकी इतनी बड़ी योग्यता है कि संकीर्तन मूवमेंट को आगे बढ़ाए, किसी रुकने नहीं दिया, देखो पुत्र के मरने तक में, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता है इससे। तो इस प्रकार के श्रीवास पंडित के विषय में बहुत सारी कथाएं हैं, वो आप लोग कई बार सुने भी होंगे, और नहीं सुने हैं तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अभी इतना समय है नहीं। बोले श्रीवास पंडित जी की, श्रीमान चेतन महाप्रभु की, ताई गौर हरि प्रेमानंदे।